Hare Krishna, following is a lecture by His Grace Rukmani Krishna Prabhuji and Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, 13th chapter and verse number 32, on 16th of April 2007. And the topic is Sankirtan Yajna.
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya
Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda
Jaya
Jaya Shri Chaitanya Prabhu Nityananda
Jaya
Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda
आदि लीला अध्याय 13 और पर्याप्त संख्या 30, 31, 32। किसी को याद है पिछले सोमवार क्या चर्चा हुई थी? याद है किसी को? बाल लीला शुरू हो गई थी। बाल लीला नहीं, महाप्रभु पौगंड अवस्था में प्रवेश कर चुके थे, उनका विवाह हो चुका था और उन्होंने विद्यालय शुरू कर दिया था। सूत्रवृत्त पांजी टीका कृष्ण देता पर शिष्य प्रतीत है प्रभाव आश्चर्य। उन्होंने अपना विद्यालय शुरू कर दिया था और विद्यालय में सूत्रवृत्ति पांजी टीका के द्वारा, व्याकरण के द्वारा लोगों को, विद्यार्थियों को कृष्ण का संदेश देते थे। और आज है 30वीं प्रयाग है। यारे देखे तारे का ही कह कृष्ण नाम, कृष्ण नामे भसाइल नवद्वीप ग्राम। इसका अनुवाद होता पर पढ़ूंगा पहले और फिर बाद में ये प्रयार पढ़ूंगा। तो 30वें प्रयार का अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तो उन्होंने जो कोई मिलता था उसी को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इस तरह उन्होंने पूरे नवदीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से आप्लावित कर दिया। तात्पर्य, वर्तमान नवदीप धाम संपूर्ण नवदीप का एक अंश मात्र है। नवदीप का अर्थ है नवदीप समूह। ये नवद्वीप जो कुल मिलकर 32 वर्ग मील भूमि में हैं, गंगा की विभिन्न धाराओं द्वारा घिरे हैं। नवदीप क्षेत्र के इन नवद्वीपों में भक्ति का अनुशीलन करने वाले विभिन्न स्थान हैं। श्रीमद् भागवतम में बतलाया गया है कि भक्ति नवविध होती है, अर्थात 9 प्रकार के भक्ति कार्य होते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आप निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति के अनुशीलन के लिए नवदीप क्षेत्र में विभिन्न द्वीप हैं। वे इस प्रकार हैं: अंतरद्वीप, सीमन द्वीप, गोद्रम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मोद्रम द्वीप तथा रुद्रद्वीप। बंदोबस्त नक्शे के अनुसार हमारा इस्कॉन नवदीप केंद्र रुद्रद्वीप में स्थित है। रुद्रद्वीप के नीचे अंतरद्वीप में मायापुर है। वहीं चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे। युवक चैतन्य महाप्रभु इन सारे द्वीपों में अपनी संकीर्तन मंडली का नेतृत्व करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे क्षेत्र को कृष्ण प्रेम की लहरों में आप्लावित किया। 31वीं प्रयार है। किशोर वयस्य आरंभिला संकीर्तन, रात्र दिन प्रेमे नित्य संगे भक्त गण। इसका अनुवाद, युवावस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। वे अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर अहर्निश नित्य किया करते थे। और फिर आज की प्रयाग 32वीं। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करैया, भासाइल त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। नगरे नगरे धामे कीर्तन करैया, भासाइल त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। नगरे नगरे धामे कीर्तन करैया, वासाइल त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया कीर्तन करते हुए भ्रमण करने लगे त्यों त्यों संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया। इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम का वितरण करके आप्लावित कर दिया। तात्पर्य, कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण प्रेम से तीनों जगत किस प्रकार आप्लावित हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो नवद्वीप क्षेत्र में ही कीर्तन कर रहे थे। इसका उत्तर यह है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। सर्वप्रथम भगवान द्वारा गतिमान सक्रिय बनाए जाने पर अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। इसी प्रकार 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि संकीर्तन आंदोलन विश्व भर में फैले, तो इस आंदोलन को गति मिली और आज उसी गति की निरंतरता में कृष्ण भानवित आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है और इस तरह यह धीरे धीरे अखिल ब्रह्मांड में फैल जाएगा। कृष्ण भानवित आंदोलन के इस प्रकार फैलने से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के सागर में निमग्न हो जाएगा। ओम अज्ञानात् निरांधस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनां तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्विषे नमः नमोम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु पौगड़ अवस्था से युवावस्था में प्रवेश कर गए हैं और अब वो क्या कर रहे हैं। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करैया भाषा इला त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया कि जो जो महाप्रभु सर्वत्र कीर्तन करते हुए भ्रमण करने लगे त्यों त्यों संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया। तो संकीर्तन आंदोलन के बढ़ने से क्या हो रहा है, इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम का वितरण करके आप्लावित कर दिया। अब यहां पे बहुत अच्छा प्रश्न तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्होंने तो केवल नवदीप में कीर्तन किया तो ये पूरा जगत भगवत प्रेम से कैसे आप्लावित हो गया। आप्लावित का अर्थ है कि उसमें बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई भगवत प्रेम की। तो वो तो खाली नवदीप में एक छोर से दूसरे छोर किया, पूरा का पूरा विश्व कृष्ण प्रेम में डूब गया। तो ये कैसे संभव है। सबसे पहले तो हमें ये कनेक्शन समझना पड़ेगा कि कीर्तन करने से कृष्ण प्रेम कैसे का वितरण हो रहा है। हमारे कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं तो इसे कृष्ण प्रेम का वितरण कैसे हो रहा है। और दूसरा कि उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर तक कीर्तन किया तो पूरा विश्व भगवत प्रेम में डूब गया। तो अगर इन बातों को हम समझ जाएंगे तो हमें चैतन्य महाप्रभु के आने का उनका प्रयोजन और फिर हमें अपने जीवन का क्या उद्देश्य है वो मालूम चलेगा। हम सब लोग काफी वर्षों से इस कृष्णा महाभावित आंदोलन में जुड़े हुए हैं लेकिन दुर्भाग्यवश ये कहिए कि हम लोग अभी इसको पूरे ढंग से इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में ये कृष्णा महाभावित आंदोलन क्या है, ये संकीर्तन आंदोलन क्या है। संकीर्तन जो आंदोलन है बहुत ही उच्चतम कार्य है क्योंकि आज के श्लोक से मालूम चलता है कि महाप्रभु नगर नगर में कीर्तन कर रहे हैं और पूरे विश्व को भगवत प्रेम में कृष्ण प्रेम में डुबा रहे हैं। फिर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान तो परम स्वतंत्र है, इस सृष्टि की रचना भगवान कैसे शुरू करते हैं, एक दृष्टिपात से। भगवान दृष्टिपात करते हैं तो अव्यक्त प्रकृति जो प्रधान रूप में होती है वो सक्रिय हो जाती है और फिर महातत्व बन के पूरा का पूरा हमारा दृष्टि हमारे सामने प्रकट होती है। उसी ढंग से 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु बन के और नवदीप में संकीर्तन आंदोलन केवल प्रारंभ करते हैं। जिस तरह से भगवान ने दृष्टिपात किया था उसी ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने केवल संकीर्तन आंदोलन नवदीप में प्रारंभ किया और उसके बाद क्या हुआ कि उनके सेनापति के द्वारा पूरे विश्व में इसको फैलाया जा रहा है। तो देखिए भागवत में वर्णन है कृते यद्धायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखी द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनम्। प्रत्येक युग में हम जैसे बद्ध जीवों के लिए एक मार्ग बताया गया है जिसके द्वारा हम कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। सत्ययुग में ये मार्ग था ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में है यज्ञ के द्वारा, और द्वापर युग में है बड़े बड़े पूजाओं के द्वारा, और कलयुग में है हरि नाम कीर्तन के द्वारा। यज्ञ का अर्थ होता है एक पुल, एक ब्रिज। एक पुल कहां का है? इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने का एक पुल है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक लिंक है, वो है यज्ञ। तो ये जो रास्ता था, जो पुल था, ये संबंध था, सत्ययुग में था ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में था यज्ञ के द्वारा, और द्वापर युग में बड़ी बड़ी पूजाओं के द्वारा, और कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन के द्वारा। इसलिए कहा गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री भाव मिथा जी की। तो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हम अपने जीवन के लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरेक जीव का भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, और एक प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य है कि इस संबंध को जाने कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। और भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम में जानाति यावन शास्त्री तत्वतः, कि केवल भक्ति के द्वारा ही आप मेरे को तत्व से जान सकते हो। अब भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा तत्व से कौन जानता है? राधिका जी, राधा रानी जी, क्योंकि वो भगवान को तत्व से जानती है। ठीक है, अब भगवान गीता में ये भी कह रहे हैं कि मनुष्य नाम शस्त्र कश्चित सिद्ध है यदा सिद्धा नाम कश्चित माम वेति तत्वतः, कि हजारों हजारों मनुष्यों में ही कोई मुझे जानने का प्रयास करता है, उनमें से भी कोई विरला मुझे तत्व से जान पड़ता है। फिर आगे बोलते हैं सा महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो फिर हम कैसे भगवान को तत्व से जान पाएंगे? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बहुत दुर्लभ है, लेकिन उसी भक्ति को देने के लिए, जिस भक्ति के माध्यम से हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे, जैसे कि राधा रानी ने कृष्ण को जाना, जैसे कि राधा रानी जी कृष्ण को तत्व से जानते हैं, उसी भक्ति का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण आए हैं राधा रानी के भाव में, और हम जैसे अयोग्य जीवों को वो प्रेम बांट रहे हैं, वो विद्या दे रहे हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, कि अपने बारे में भक्ति योग बताने आए हैं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण आए हैं। जो राधा रानी का प्रेम है, जिसके द्वारा वो कृष्ण को जान पाती हैं तत्व से, उस प्रेम का वितरण कृष्ण कर रहे हैं बिना किसी योग्यता को देखे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये। तो संकीर्तन आंदोलन अक्सर लोग समझते हैं कि हरे कृष्ण हरे रामा वाले वो छलते कूदते रहते हैं बस, उनको कुछ और पता नहीं है। कल कोई हमारे व्यक्ति हमारे पास आए थे, बोला आप सबको आना जी, पिछली बार भी आए थे, बड़ी ऐसी रौनक लगी थी। तो एक आइटम समझते हैं हम लोगों को कि ये कुछ भक्त लोग हैं, नाचेंगे कूदेंगे अच्छा लगेगा, कोई डीजे पार्टी है इनकी, तो बोले बड़ी रौनक लगाते हो आप लोग। तो यही समझते हैं ये लोग उछलते कूदते रहते हैं और कुछ पता नहीं इनको, लेकिन वो नहीं मालूम है उस उछलने कूदने में क्या बांट रहे हैं हम, कृष्ण का प्रेम, जो राधा रानी का प्रेम है, जिसके द्वारा वो कृष्ण को जान पाती है। ये उछलना कूदना भगवान ने स्वयं किया, वो स्वयं भगवान थे, त्रिलोकी नाथ सर्वलोक महेश्वर, वो नगर नगर भ्रमण कर रहे हैं, नाच रहे हैं कूद रहे हैं, उनको भी ये बोलेंगे ये देखो ये रौनक लगा रहे हैं। वो नाचते कूदते हुए क्या कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। तो ये संकीर्तन आंदोलन है, इसमें हम राधा रानी का प्रेम बांट रहे हैं। तो हम लोग राधा रानी के प्रेम बांटने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य है। हम उस प्रेम को बांट रहे हैं, जिस प्रेम को बांटने से हम कृष्ण को तत्व से समझ सकते हैं, और वापस कृष्ण के साथ अपना प्रेममय संबंध स्थापित करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो संकीर्तन आंदोलन बहुत उच्चतम कार्य है। स्वयं भगवान सड़क गली गली नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और इस प्रेम का वितरण कर रहे हैं। तो यह है संकीर्तन यज्ञ, और इसी यज्ञ को हमें कृष्ण वंदन पिशा कृष्णम संग पंगस्त पार्षतम यज्ञ संकीर्तन प्राही यजंते ही सुमेधसा। तो इस संकीर्तन यज्ञ को देने के लिए ही कृष्ण आए हैं, और यजंते ही सुमेधसा, केवल जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो इस यज्ञ में भाग लेंगे और अपने जीवन को भी सफल करेंगे और दूसरे के जीवन को भी सफल करेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ यह है कि अपने आप को शुद्ध करो और दूसरों को शुद्ध करो, खुद को शुद्ध करो और दूसरों को शुद्ध करो, यह है संकीर्तन आंदोलन। इससे हमारा भी शुद्धिकरण होता है और दूसरों का भी शुद्धिकरण होता है। तो इसमें हमें पूरे उत्साह से जुड़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाल यहां लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष शुरू किया, एक गति दी, उसके बाद यह अपने आप पूरे विश्व में फैल रहा है। किसके द्वारा फैल रहा है? इस कृष्णा धर्माभावित आंदोलन के द्वारा। सो दिस इस्कॉन मूवमेंट इज नॉट एन ऑर्डनरी मूवमेंट, इज नॉट एन ऑर्डनरी सोसाइटी। अब देखिए कि चैतन्य महाप्रभु ने केवल स्पार्क किया, शुरू कर दिया, उसके बाद ये अपने आप फैल रहा है। किसके द्वारा? इस हरे कृष्णा आंदोलन के द्वारा। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में हर जीव कृष्ण प्रेम में डूब जाएगा। और इस सारा कार्य, अब ये कार्य किसको करना है कि पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण प्रेम का वितरण किसको करना है? किसको करना है? हम सबको करना है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो कार्य होगा कि नहीं होगा? कार्य तो होगा ही होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कह चुके हैं पृथ्वी आते आते नगर आदि गांव सर्वत्र प्रचार हो पे मोर नाम। तो अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इस संकीर्तन आंदोलन में हम भाग लें और इस क्रेडिट को हम प्राप्त कर लें। चैतन्य चैतन्यमृत में वर्णन आता है कि महाप्रभु कह रहे हैं, नाचो गाओ भक्त संग करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशित तार सरजन। कि नाचो गाओ भक्त संग, भक्तों के संग में अकेले नहीं, और कीर्तन करो और कृष्ण नाम का उपदेश देके सब लोगों का उद्धार करो। और चैतन्य चैतन्यमृत में आगे बताया गया है कि हम सबको पंच तत्व के प्रति बहुत ही कृतार्थ होना चाहिए, जिन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करके पूरे ब्रह्मांड को तार दिया है। और इसी ढंग से भागवत के छठे स्कंध में कहते हैं कि संकीर्तन आंदोलन के द्वारा पूरा विश्व एक सुखमय स्थान बन जाएगा। भगवान तो गीता में कह रहे हैं दुखाले में शाश्वतम, लेकिन संकीर्तन आंदोलन के द्वारा पूरा विश्व सुखमय बन जाएगा। हम सब अपने जीवन में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। तो कहा जाता है कि दो तरह के भक्त होते हैं, एक होते हैं गोष्ठानंदी और एक होते हैं भजनानंदी। जो भजनानंदी होते हैं वो केवल अपने साधना के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन हमने क्या बनना है? गोष्ठानंदी। जैसे कि प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं तो कहीं भी रहकर भगवान के नाम और लीलाओं में डूब कर अपना आनंद में रह सकता हूं, लेकिन सब मूर्खों का क्या होगा जो कि इस भौतिक जगत में सुख ढूंढ रहे हैं। क्योंकि एक भक्त के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड कृष्ण का परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम। एक भक्त के लिए कोई भी जीव एक स्ट्रेंजर नहीं है, हर जीव उसको लगता है कि कृष्ण का अंश है। अगर ये जीव दुख में है यानी कि कृष्ण से विमुख है तो उसको मुझे निश्चित रूप से कृष्ण के पास ले जाना चाहिए। तो संकीर्तन का अर्थ है कि हम एक ऐसा कार्य करें जिसमें प्रत्येक जीव कृष्ण भक्ति में जुड़े, किसी न किसी तरीके से हम जीवों को कृष्ण भक्ति में जुड़े। यह है संकीर्तन आंदोलन का अर्थ, चाहे उसको मालूम रहे या ना रहे। जैसे कि एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य थे जयानंद प्रभु, जयानंद प्रभु की सेवा थी कि वो जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ बनाते थे। तो एक बार जब वो रथ बना रहे थे तो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में एक व्यक्ति वहां से निकला, तो जयानंद प्रभु ने उनको रोक लिया। बोले कृपया कर थोड़ी मदद करो। बोले क्या है? ये जो कील है इसको ठोकना है। तो उस व्यक्ति ने कील लिया और ठोका और वो व्यक्ति फिर इस्कॉन आंदोलन से जुड़ गया। और वो व्यक्ति हैं आज हैं हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। देखो ये देखिए, ये है संकीर्तन किसी ना किसी तरीके से, ये इनके इन प्रकार इसको बोलते हैं अज्ञात स्वीकृति। उनको मालूम ही नहीं मुझसे क्या कराया जा रहा है, लेकिन भक्तों का ये भाव रहता है कि किसी ना किसी ढंग से सबको सेवा में जोड़ा जाए। तो हम लोगों को आमंत्रित करते हैं कृपया करके आइए, नहीं आ सकते तो हम बोलते हैं चलो ठीक है, किसी ना किसी ढंग से आप कुछ लक्ष्मी दीजिए, आप कुछ दान दीजिए, हम उनका बहुत सम्मान करेंगे, उनका खूब यशों का गुणगान करेंगे। ये किसी ना किसी ढंग से जुड़े, तो एक बार जो व्यक्ति जुड़ जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका शुद्धिकरण होगा और वे संकीर्तन आंदोलन में आगे जाके कृष्ण प्रेम बांटने के लिए एक माध्यम बनेगा। तो हम सबका यही भाव होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम इस कृष्ण के संदेश का प्रचार कर सके। लेकिन इसको करने के लिए हमें पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद ने जो चार प्रिंसिपल्स दिए हैं, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड टीचिंग इज द एसेंस। तो हमें पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़कर अपनी साधना को अच्छा करके उसके बाद हमें प्रचार करना पड़ेगा। जब वो प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम उनको कृष्ण के प्रति उन्मुख कर पाएंगे। देखिए ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज नॉट बी रन ऑन पॉलिटिक्स। ये कोई साधारण सोसाइटी नहीं है कि पॉलिटिक्स करके यहाँ पे कुछ तिकड़मबाजी करके मैनिपुलेशन करके यहाँ काम चलेगा। नहीं, दिस मूवमेंट इज बीइंग रन ऑन प्योरिटी। ये शुद्धता हरि नाम का ये आधार है, हरि नाम पर चल रहा है, शुद्धता पे चल रहा है। तो जितना हम शुद्ध रहेंगे उतना ज्यादा इसका हम तेजी से प्रचार कर पाएंगे। तो हमें इस हरि नाम संकीर्तन आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता। ये सुनामी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरू की है। जब भगवान ने दृष्टिपात किया तो सृष्टि होने से कोई इसको रोक पाया? किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी जो सृष्टि को होने से रोक सके। इसी ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने एक बार गति दे दी है इस संकीर्तन आंदोलन की, गति दे दी है, तो निश्चित रूप से ये फैलेगा ही फैलेगा। किसी भी तरह की बाधा इसको नहीं रोक सकती। अगर रोकेगी या कोई बाधा आएगी भी तो चैतन्य महाप्रभु उस बाधा को दूर कर देंगे। जैसा कि हम नवदीप परिक्रमा में जाते हैं तो एक स्थान आता है जब महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन निकल रहे थे तो ऊपर बादल आ गए थे, तो भक्त लोग परेशान हो गए कि अब संकीर्तन कैसे करेंगे। तो महाप्रभु ने क्या किया, करताल ली और किया, करताल बजाई और क्या हुआ, बादल छट गए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और बादल छट गए। इस ढंग से कई बार ऐसा लगता है भक्तों को कि संकट के बादल आ गए हैं, अब क्या होगा, आगे कैसे काम चलेगा, कैसे प्रीचिंग होगी। और श्रील प्रभुपाद चैतन्य चैतन्य तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो इस्कॉन को दिस बीइंग पर्सनली सुपरवाइज बाय चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। हर समस्या का समाधान है हरिनाम संकीर्तन। प्रीचिंग इज द एसेंस, तभी बताया गया हर समस्या का समाधान। समस्या का समाधान गुट बनाने से, पॉलिटिक्स करने से नहीं होगा, हरिनाम संकीर्तन से समाधान होगा। जैसे कि हरिनाम संकीर्तन को रोका था चांद काजी ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सारे भक्तों को इकट्ठा किया और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वो पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। सब भक्तों को लेकर वो आ गए और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया और चांद काजी में परिवर्तन हो गया। इसलिए स्वयं भगवान आ रहे हैं भक्त के रूप में हमें सिखाने के लिए, तो हमें सीखना है और पूरे उत्साह से हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना है। छठे स्कंद में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि ये पार्वती देवी, इन वैष्णवों को कम मत समझना, ये वैष्णव कहीं भी जा सकते हैं, नरक में जाके भी प्रचार कर सकते हैं, तो इनको कम मत समझना है। वैष्णवों की शक्ति को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इसलिए हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं कहां कहां नहीं पहुंच गए, चाइना तक की जैसी जगह में जाकर आजकल प्रचार हो रहा है। अगर आप जाएं, उस दिन माननीय स्वामी महाराज बता रहे थे कि अपने समय में उनके वो लॉस एंजेलिस मंदिर में 300 कर्मचारी थे, 300। वो क्या करते थे कि बाहर प्रचार में निकलने के लिए विग डालते थे, जीन्स डालते थे और बुक्स लेकर फुटबॉल मैचेस में जा रहे हैं, नाइट क्लब में जा रहे हैं, बार्स में जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स में जा रहे हैं, जहां की माया एकदम कितना ज्यादा देखिए अटैक है, लेकिन वहां जाकर वो किताबों का वितरण कर रहे हैं। तो वो नर्क से कम थोड़ी है ना। तो जो शिव जी की ये स्टेटमेंट है कि इन भक्तों को कम मत समझना, ये नरकों में चले जाएंगे, तो वो नरक ही तो है, बार्स में जा रहे हैं, नाइट क्लब में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन हमें भी ज्यादा उत्साहित होकर करना नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम संकीर्तन आंदोलन में सफल हों, तो हमें निरंतर, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि हमें अपने निरंतर संकीर्तन की अग्नि में जलाना पड़ेगा। संकीर्तन की अग्नि में कैसे जलाना पड़ेगा कि निरंतर कृष्ण का स्मरण करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना पड़ेगा, 16 माला का अच्छे ढंग से जप करना पड़ेगा, भक्तों के साथ मधुर संबंध रखने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा प्रचार सफल होगा। श्री राजीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस भक्त के हृदय में ईर्ष्या है उसका प्रचार कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रचार करने के लिए हमें सबसे पहले सब जीवों को आदर देना पड़ेगा। जब हम प्रचार करने जाएं तो हमारी ये मानसिकता नहीं आनी चाहिए कि आ गया एक महाभागवत आप सब भक्त जीवों का उद्धार करने के लिए, हे पशु समान जीवो आहार की तरफ भय छोड़ो, और मेरे संदेश को सुनो। मैं हूं चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधि तुम सबका उद्धार करने के लिए। आ रहे हैं, बोलो हरि नाम, लो सब लो हरि नाम, इससे कुछ असर नहीं होगा। और ये श्लोक वो श्लोक सुना सुना के उसको पागल कर दे। नहीं, हमें आदर करना पड़ेगा, हृदय से आदर करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ये कृष्ण का अंश है। और जब हम उसके पास जाए तो अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझें और हृदय से प्रार्थना करते रहे, बार बार प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान, मैं किसी ना किसी तरह से इस जीव को आपके प्रति उन्मुख कर सकूं, कृपया करके मुझे अपना उपकरण बनाइए, अपना इंस्ट्रूमेंट बनाइए, अपना एक एजेंट बनाइए कि मैं इसको सेवा में जोड़ सकूं। देखिए, हमें आपस में बातचीत करने के लिए बोलना पड़ता है। अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं चुपचाप तो आप नहीं समझ आएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं, भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, तो चुपचाप हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी प्रीचिंग मिशन में जाते हैं, बाहर किताबों का वितरण करना जाते हैं, किसी को अपने प्रोग्राम में निमंत्रण देने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा हम विनम्र भाव में रहेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रचार सफल होगा, और जितना ज्यादा हम प्राइड और अहंकार में रहेंगे तो प्रचार सफल नहीं होगा। तो हम सबको समझना है कि वास्तव में हम इस कृष्णा भावमृत आंदोलन में जुड़े हैं, ये एक बहुत विशेष घटना है। और इसके पीछे क्या प्रयोजन है, हम सबको अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि यहां पे बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने गति दे दी है और इस पूरे ब्रह्मांड में, ये नहीं कह रहे कि खाली भारत को उद्धार करना है, पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उनको कृष्ण प्रेम देना है, और देने के लिए हम ही लोग एजेंट हैं और कोई नहीं है। तो हमें अपने रोल को समझना है कि हमारा क्या रोल है। अक्सर हम लोग, आप में से अधिकतर लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हम तो सोचते हैं कि हमारा यही रोल है कि घर में बच्चों को अच्छा सेटल कर लें और परिवार चलता रहे, बिजनेस चलता रहे, सोला माला हो जाए, कभी हफ्ते में एक दो बार मंदिर चले जाए, बस ठीक है, ये हमारा जीवन अच्छा है। नहीं, ये हमारा रोल नहीं है। ये आशा नहीं कर रहे महाप्रभु हम सबसे, महाप्रभु हमसे ये आशा नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि आप सब मेरे एजेंट बनिए और इस प्रेम का वितरण कीजिए, है ना। जीवन स्वरूप होवे कृष्ण नित्य दास, हम सब का अस्तित्व है कृष्ण के दास हैं। हमारा स्वरूप ये नहीं है कि मैं हस्बैंड हूं, मैं वाइफ हूं, मैं बच्चा हूं, मैं पति पत्नी हूं, मैं मालिक हूं, मैं नौकर हूं, नहीं। हमारा स्वरूप है कि हम सब कृष्ण के दास हैं, तो जो कृष्ण की इच्छा है उसको हमने पूरा करा है, तभी हम जीवन में सुखी रहेंगे। अपने उपाधियों के चक्कर में पड़े रहे, ये सब उपाधियां हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूं, मैं मालिक हूं, मैं नौकर हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, ये सब उपाधियां हैं। इसको त्याग करके हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि संकीर्तन आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर महाराज कहते हैं कि हमेशा हमें ये इच्छा रखनी चाहिए कि इस व्यर्थ के जीवन को हम इस संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में डाल दें, आहुति के रूप में। देखिए ना, अगर हम चिंतन करें थोड़ा सा, ये शरीर तो समाप्त होना ही होना है, इसकी चिता तो जलाई जाएगी, कोई रोक सकता है इसको? कोई नहीं रोक सकता। अग्नि में तो इसने जलना ही जलना है। कितने, अगर आप जाते हैं शमशान घाट में, कितनी चिताएं जल रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, चलता जा रहा है ये चक्र। हमारे साथ भी यही होगा, तो ये जीवन सफल नहीं होगा। सफल तो वो माना जाएगा कि जब तक हम इस शरीर में हैं, इस शरीर को हम क्या करें, संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में डाल दें, तो फिर दोबारा उस चिता पे नहीं जलना पड़ेगा हमें, क्योंकि यही कलयुग का विधि है भगवान को प्राप्त करने की, और इसी से ही हमारा परम लाभ होता है। भागवतम के 5-11 स्कंद में बताया जा रहा है, ना ही तो परमो लाभो देही नाम भ्राम्यता में ही ततो विन्दे परमा शांति नश्यति संस्कृति, कि इस संकीर्तन आंदोलन से बड़ा और कोई परम लाभदायक वस्तु नहीं है। ना ही तो परमो लाभो, उन सब जीवों के लिए जो कि देही नाम भ्राम्यता में ही इस ब्रह्मांड में भ्रमण किए जा रहे हैं, धक्के खाए जा रहे हैं, क्या होता, ततो विन्दे परमा शांति, उसको करके उनको परम शांति की प्राप्ति होगी, नश्यति संस्कृति, और फिर संसार के चक्कर से उनका छुटकारा हो जाएगा। संसार के चक्र में उसे जा बाप और जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम इस संकीर्तन आंदोलन में पूरे उत्साह से भाग लें। तो इस संगीत आंदोलन में भाग लेने के लिए हमें तन मन और धन से तैयार होना चाहिए। इसमें हमने कुछ भी अपने लिए संभाल के नहीं रखना, क्योंकि यही कलयुग की विधि है। अब बोले अगर सब कुछ ही मैंने भगवान को अर्पण कर दिया तो मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा, है ना, क्या खाऊंगा, क्या कपड़े डालूंगा, कैसे परिवार का पालन करूंगा, तो ये चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज एक कथा सुनाते हैं कि जब ब्रज में एक महिला आई थी भगवान श्री कृष्ण के पास सेब लेकर, तो क्या हुआ था, भगवान ने सारे सेब ले लिए उसके, बोले अंदर से कुछ अनाज के दाने लेके आए और अनाज के दाने लाते लाते सब गिरते गए। लेकिन जब उस महिला ने देखा तो उस टोकरी में क्या था, पूरे के पूरे आभूषण ही आभूषणों से वो भर गया था। तो जब भगवान के लिए हम कुछ देते हैं, जितना ज्यादा हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, जितना ज्यादा हम भगवान को देंगे, भगवान उससे कई गुणा हमें वापस देंगे। तो इसमें बिल्कुल भी हमें डरना नहीं चाहिए कि हम कुछ छुपा के रख लें, कुछ तो रखें अपने लिए, नहीं, सर्वस्व अर्पण, सब कुछ गुरु और कृष्ण के प्रति हमें अर्पण कर देना चाहिए। तभी हमें इस कृष्णा कॉन्शियस का जो एक आनंद हमें प्राप्त होगा कि इसमें एक आनंद है। और सबसे मुख्य बात यह है कि अब आप पूछ सकते हैं कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे इसका पालन कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं उनको कुछ नहीं करना, बोले 10-5 मिटी निज द्वारते वसिया, 10-5 लोगों को इकट्ठा करो अपने घर में और ताली बजाकर हरिनाम संकीर्तन करो, बस, और कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा बलिदान नहीं करना। कुछ लोगों को इकट्ठा कीजिए, अपने घर में बुलाइए और एक प्रोग्राम करिए और उनके साथ भगवान की कथा करिए, भगवान का गुणगान करिए। और इस ढंग से ऐसे छोटे छोटे कई ग्रुप्स हों और पूरे विश्व में हम फैल सकते हैं। उस दिन गुरु महाराज बता रहे थे कि मस्कट जैसे शहर में, जो कि एक मुसलमान शहर है, उन्होंने प्रवचन में तो बताया था 400 ऐसे भक्ति वृक्ष हैं, फेलिसिया के बताया था कि मैं भूल गया था, लगभग 2000 भक्ति वृक्ष ग्रुप है ऐसे चल रहे, 2000। देखिए हर एक ग्रुप में अगर 10 लोग भी आ रहे हैं तो 20,000 लोग तो ऐसे ही हो गए, कम से कम 10 अगर आ रहे हैं तो 20,000 लोग तो ऐसे ही आ गए। तो इसलिए इसको हमने समझना पड़ेगा और इस संकीर्तन अग्नि में हमें जुड़ना पड़ेगा। स्कंद पुराण में बताया गया है कि महाभागवत नित्यम कालो कुर्वंती कीर्तना, कि ये महाभागवतों का यही लक्षण है कि कलयुग में वो केवल हमेशा नित्य कीर्तन ही करते रहते हैं, इसके अलावा और कोई हमारा नहीं है। तो अगर हम संकीर्तन आंदोलन में निकलते हैं तो जिस ढंग से एक डॉक्टर, एक महामारी फैल जाती है तो एक समझे छुआछूत की बीमारी फैली है तो डॉक्टर जाके उसका इलाज करता है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर को खुद को वैक्सीनेशन लेना पड़ता है कि वो वैक्सीनेशन ले ले ताकि उसके ऊपर इस बीमारी का असर ना हो। इसलिए जब हम प्रचार के लिए बाहर जाते हैं तो हमें पहले अपना वो खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो वो तैयारी क्या है कि हम अच्छे ढंग से साधना करके जाएं। और दूसरा, जितना ज्यादा हम सेल्फलेस होंगे उतना ज्यादा हमारा प्रचार सफल होगा। जितना ज्यादा हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होनी चाहिए कि इस प्रचार के द्वारा मुझे कुछ यश मिले या मेरा गुणगान हो या मेरा कुछ अपना एक हिडन मोटिव हो। इस मोटिव से अन्य विलासिता शून्यम, ऐसे अन्य विलासों से हम शून्य होंगे उतना ज्यादा हम अपने प्रचार को सफल कर पाएंगे। और देखिए आज पूरे इस विश्व में केवल इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो कि हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रही है। अभी हाल ही में तिरुपति मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो तिरुपति मंदिर के उद्घाटन में जो बालाजी तिरुपति के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, तो उन्होंने उद्घाटन करते हुए कहा कि हम लोग तो आजकल केवल ऐसे केवल कहते हैं रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, आरती वगैरह करते रहते हैं, केवल इस्कॉन ही एक संस्था है कि जो वेदों में असली बताई गई बात का प्रचार कर रहे हैं। पूरे वेदों में बताया गया है कि हरि नाम का प्रचार करना है। तो मैंने कहा इस्कॉन ही एक संस्था है, हम लोग तो क्या करें, केवल पूजा आरती कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। इसमें जैसे हम देखते हैं कि अगर हम आप में से कुछ लोग अगर कुंभ मेला में गए होंगे तो कुंभ में लाखों 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 लोग आए हैं और तथाकथित लाखों लाखों साधुगण आए हैं और उसमें एक शाही स्नान निकाला जाता है ना। शाही स्नान देखा किसी ने? तो एक अपने आप एक अपना अनुभव है, बहुत ही रोमांचकारी घटना, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। उसमें क्या होता है कि अलग अलग संस्थाओं के महंत होते हैं, हाथियों में बैठे होते हैं और वो सबको दर्शन दे रहे होते हैं। एक परेड होती है, 26 जनवरी की परेड होती है, तो उस परेड में हम लोग अपने नया नया टैंक क्या आया, नई बंदूक कौन सी है, वो सब काम प्रदर्शन करते हैं। इसी ढंग से शाही स्नान में जो बड़े बड़े महंत है अपना प्रदर्शन करते हैं, तो उनका गुणगान करते हैं, उनके शिष्य नीचे होते हैं और वो सबको आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। और इसके लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत लड़ाइयां होती हैं कि पहले मेरा नंबर आएगा फिर उसका नंबर आएगा, और इसके लिए कई कत्लेआम हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, नागा बाबा होते हैं, उनके हाथ में तलवार होती है, अगर उनके हम रास्ते में आए तो काट देते हैं। इसलिए पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो ये शाही स्नान चला जा रहा था एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो उसके बाद जब सब लोग निकल गए तो उसके बाद क्या आया, इस्कॉन, एक छोटी सी बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के ऊपर कौन बैठे थे, गौनिताई जी और श्रील प्रभुपाद, और हम क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए किसी को चिंता नहीं है कि उद्धार करना है, हर किसी को अपने पब्लिसिटी की लगी हुई है, किसी को कोई चिंता नहीं है। केवल इस्कॉन एक संस्था थी जो कि वेदों में दिया गया है कि कलो हत हरि कीर्तना, केवल हरि के कीर्तन का प्रचार करना है, तो केवल इस्कॉन संस्था के द्वारा यह प्रचार किया जा रहा था। तो हमें कोई जल्दी नहीं है कि सबसे पहले हम स्नान करें, हम सबसे अंत में स्नान करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। यही बात भागवतम के 11 स्कंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि बिना भक्तों के संग में मेरी भक्ति किए इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना असंभव है। इस भौतिक जगत से निकल पाना भक्तों के संग में भक्ति किए बिना असंभव है। तो इस बात पर हम देखें तो भक्तों के संग में भक्ति इस कलयुग में केवल इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट द्वारा की जा रही है। हरे कृष्ण आंदोलन में ही हम भक्तों के संग में रह के ये भक्ति कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं होगा, अगर हम हरे कृष्ण आंदोलन में नहीं जुड़े होते, तो कोई भी स्कोप नहीं है किसी जीव के लिए कि इस भौतिक जगत से उसका छुटकारा हो सके। आप समझ लें इस बात को। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो इस्कॉन आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं है और हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, चाहे हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, युवा हैं या वृद्ध हैं या किसी भी आश्रम में हैं। अगर हम हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़े हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वैसे तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा है कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच, कि कोई बिरला जीव होता है, कोई भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। लेकिन इससे भी बड़ा भाग्यशाली वो जीव है जिसको गुरु के द्वारा ये आदेश प्राप्त होते हैं कि वह संकीर्तन आंदोलन में जुड़े और प्रचार करें। ये हाईएस्ट टॉप मोस्ट भाग्य है, फॉर्च्यून है कि हम संकीर्तन आंदोलन में किसी न किसी तरीके से भाग ले पा रहे हैं। तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए, पूरा लाभ उठाना चाहिए। और इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना बहुत ही आसान है। अक्सर लोग समझते हैं कि प्रचार का अर्थ है लेक्चर देना। हम बोलते हैं प्रभु प्रचार कार्य में जुड़े ना, नहीं मैं क्या कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास धन है, तन है, मन है, ये किसके लिए है, इसको प्रचार में लगाना है। अगर आप लेक्चर नहीं दे सकते हैं तो जो लोग लेक्चर दे रहे हैं उनका सहयोग दीजिए, हरिनाम जो इसका संयोजन कीजिए कि मिलकर हरिनाम करें, अलग अलग भक्ति विषयक कार्यक्रम का संयोजन कीजिए, उसमें भाग ले सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस कौन में केवल एक ही रोटी है, वैसे 84 लाख क्यों नहीं आएगा, 84 लाख योनिया में, तो 84 लाख योनिया में से इस कौन संस्था में हरि बोल, तो बोल रहे हैं कि इस कौन संस्था में केवल एक ही योनि है, कौन सी, प्रचारक। तो आप ये मत सोचिए कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, नहीं, हम सब कौन है? प्रचारक है, हम सब प्रचारक हैं। तो भक्ति सिंह महाराज ये कहते हैं कि हम सबका जन्म यहाँ पे कोई बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के लिए नहीं हुआ है। हम सबका जन्म मनुष्य देह में इसलिए हुआ है कि हम चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर सकें। ये कोई तुक्के की बात नहीं है कि हम सबको भारत में जन्म मिला, उसके बाद हम श्री प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़े, उसके बाद हम प्रमाणिक गुरु की से हमें दीक्षा प्राप्त हो गई, उसके बाद हम नियमित रूप से मंदिर में आ रहे हैं। ये कोई ऐसी बाय चांस वाली बात नहीं है। नथिंग हैपन्स बाय चांस, इट इज ऑल बाय कृष्णा प्लान। ये कृष्ण की योजना है। कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमें सेलेक्ट किया है ना। भौतिक जगत में तो इलेक्शन होते हैं, आध्यात्मिक जगत में सिलेक्शन होता है ना। तो भक्त बनने के लिए किसी इलेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा उनको सिलेक्ट कर लिया कि प्रभु जी आओ, आपको सिलेक्ट कर लिया, इस जीव को सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इनको मैंने माध्यम बनाना है अपने संकीर्ण आंदोलन के प्रचार के लिए। अब भगवान ने हमें चुन लिया, नहीं, हम लोग इतने जिद्दी, बोले नहीं करूंगा। भगवान चुन रहे हैं हमें, और कोई नहीं चुन रहा, भगवान चुन रहे हैं हम लोगों को। भारत में जन्म हुआ है, प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़े हैं, ये भगवान की इच्छा है कि हम संकीर्तन में जुड़े और उनका प्रचार करें। नहीं, हम लोग इतने जिद्दी हैं, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं यहीं पे ठीक हूं, मुझे नहीं प्रचार करना। तो बहुत बड़ी मूर्खता है। तो हम सबको बहुत ही उत्साह से इसमें जुड़ना चाहिए। और कई बारी हमारे मन में ये संदेह उत्पन्न होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये हर किसी को जाके प्रचार कर रहे हैं, यही बातें बता रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, मनुष्य जीवन, पशु जीवन, कोई बड़ी बड़ी बातें करने रहे, राधा रानी का क्या रस है, मंजरियों का क्या रस है, अष्टकाली लीला, ये सब कोई चर्चा करने रहे। हमारे से अच्छे तो वो भक्त हैं जो बरसाना में बैठे हैं, जो ब्रज में बैठे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लीलाओं में डूबे हुए हैं। जब तक लीलाओं में नहीं डूबेंगे तो भगवत धाम कैसे जाएंगे? कई बार ये संदेह उत्पन्न हो जाते हैं संदेह। तो देखिए, हम सबको समझना है, हमें देखना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या क्या किया है ना। भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज ने क्या कहा कि श्री प्रभुपाद कहते हैं, माय गुरु महाराज वॉज डांसिंग विद एक्सटेसी विद पंच तत्व, मतलब पंच तत्व के साथ नाच रहे हैं, लेकिन बद जीवों का उद्धार करने के लिए वो मायापुर छोड़कर कलकत्ता में आए हैं। श्री प्रभुपाद स्वयं वृंदावन में राधावन मंदिर में थे। राधावन मंदिर को आध्यात्मिक जीवन का सबसे उच्चतम स्थान बताया जाता है, उसको छोड़कर वो नरक में गए, कहां पे? अमेरिका जैसे देश में, और वहां पर उन्होंने प्रचार किया। तो भक्ति सेठी महाराज क्या कहते हैं, हे मन तू किसे वैष्णव प्रतिष्ठा तारे निजर गारे तब हरिनाम केवल कैटअप। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अकेले बैठ के राधा कृष्ण के तट पर हम भजन करेंगे तो केवल कैटअप है, केवल दिखावा है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि कलयुग की विधि क्या है? संकीर्तन यज्ञ, कलयुग की ये विधि है। हम शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम है हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो शायद मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं, कि अभी कुछ दिन पहले हम भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की एक वीडियो देखा जो उन्होंने लास्ट उन्होंने लेक्चर दिया। उनको ब्लड कैंसर था और लंदन में उन्होंने अपना आखिरी पब्लिक अपीयरेंस किया था, और उन्होंने आखिरी शरीर छोड़ने से पहले एक अंतिम लेक्चर दिया। और भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज आप जानते हैं कि वो साउथ अफ्रीका में मुख्य उन्होंने प्रचार किया था, जो नेल्सन मंडेला से उनकी काफी घनिष्ठ मित्रता है थी। और वो कोट पैंट डालकर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बीच में जाकर उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी। तो उनको लोग बोलते थे कई बार, मतलब कि बहुत ऐसे कहते हैं, एक ट्रेडिशनल सन्यासी ना होकर प्रचार के लिए कुछ भी करने को तैयार है ना। तो उन्होंने प्रचार किया, तो वो बता रहे हैं बहुत ही, जैसे कहते हैं आप जाएं तो भक्ति स्वामी महाराज की साइट में जाकर इंटरनेट में इस लेक्चर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्वयं सुन भी सकते हैं। तो मैं केवल आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। वो बताते हैं कि जब मैं केवल ब्रह्मचारी भी था तो मैं क्या कहा करता था, भगवान से यही प्रार्थना करता था कि भगवान, जिस अंग से वासुदेव दत्त जी ने प्रार्थना की थी कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके दुखों को मैं भोगूंगा, आप इन सबका उद्धार कर दो। तो देखिए, हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसी भक्त प्रार्थना करेगा। कोई ऐसी प्रार्थना करते थे कि जितने भी ब्रह्मांड के जीव हैं उन सबके दुख मुझे दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मैं आपको दोबारा नहीं मिलूंगा, ये मैं अंतिम समय आप सबको मिल रहा हूं, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं, मुझे मालूम है मेरी सेवा क्या है। साफ साफ बता रहे कहते हैं अक्सर जो आचार्य होते हैं ऐसी बात नहीं कहते, क्योंकि लोग फिर इसको जैसे कहते हैं सहजिया हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग इस पर कोई चिंता मत कीजिए। आई नो वेयर आई एम गोइंग, आई नो माई सर्विस, मेरे को मालूम है मेरी क्या सेवा है और मैं कहां जा रहा हूं, और इस समय मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे बस। और सब उन्होंने बोला कि आप खूब हरिनाम लीजिए और इसका प्रचार कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि उनका पूरा जीवन प्रचार में लगा रहा, वो गोष्ठा नंदी थे, प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें ज्यादा विश्वास होता है। स्वयं वो जाते हुए बता रहे हैं कि मैं मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं। इसी ढंग से अभी कुछ समय पहले ही इस होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जी ने शरीर छोड़ा, तो उस दिन मोहन बाबू जी बता रहे थे कि शरीर छोड़ने से पहले लगभग रात के 10 बजे के आसपास उन्होंने शरीर छोड़ा, तो 2 या 5 मिनट पहले उन्होंने घड़ी देखी और घड़ी देख बोलते थे हाँ अभी कुछ समय बाकी है, घड़ी देखकर उठा दिया था, बोला हाँ अभी कुछ समय बाकी है। और पिछले कई दिनों से वो मणिपुर के टेम्पल अध्यक्ष को फोन करते थे और बोलते थे कि आजकल मुझे बहुत 3-3, 4-4 घंटे के स्वप्न आ रहे हैं और उसमें मुझे कुछ अलग ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं। तो साफ उन्होंने इंडिकेट कर दिया था इसी रंग से तमाम किसी को स्वयं महाराज जी कुछ समय पहले शरीर छोड़ा। तो सुबह मायापुर से निकलने से पहले वो सबको बोल गए आई एम गोइंग बैक टू होम। तो ये सारे के सारे जो विभूतियां हैं ये सब प्रचार कार्य में जुड़े हुए थे। इस उन्होंने गोर गोविंद स्वामी महाराज 1996 में मायापुर के अंदर कथा करते करते व्यास आसन पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, कितना प्रचार कर रहे थे वो। तो हम देख सकते हैं अक्सर हम देखते हैं कि हमसे पहले जो लोगों ने जो कार्य किया उनका क्या हाल हुआ है ना, हर्ष हुआ, तो हम देख सकते हैं। इसी ढंग से कई भक्त जो ग्रस्त आश्रम में थे प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले ऐसी व्यवस्था हुई कि वो वृंदावन में आए और वृंदावन में आते उन्होंने प्रभुपाद का नाम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ा। अभी वही राधाकृष्ण प्रभु जी का ने शरीर छोड़ा। तो इस संकीर्तन आंदोलन में लाभ ही लाभ है, इससे ज्यादा शुभकारी कार्य और कुछ नहीं है। तो हम सबको तन मन और धन से अपने आप को इस संकीर्तन यज्ञ में अपनी आहुति दे देनी चाहिए और इसी में हमें असली आनंद मिलेगा। इन छोटे छोटे छुटपुट छुटपुट बातों में हमें फंसना नहीं चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य हमें क्लियर होना चाहिए कि हम इस संकीर्तन इस बड़े आंदोलन में किस लिए जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं। इन छोटी बातों में फंसने के लिए नहीं, ये भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, तो इस कृपा का हम पूरा लाभ उठाएं। हरे कृष्ण। बता सकते हैं इससे पहले इसे कोई प्रश्न है उसके बाद कंक्लूडिंग में फिर आप आएंगे भी दूंगा। एनी क्वेश्चन, किसे कोई प्रश्न या कमेंट है इसके अलावा? ठीक है,
एक बहुत ही सुंदर कथा है जैसे प्रभु जी ने बताया प्रचार के लिए। तो इंद्रदिमन स्वामी हैं महाराज हैं, उनके एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इंद्रदिमन स्वामी बताते हैं कि जब वो प्रभुपाद से मिले उसके बाद वो प्रचार करते थे इन हिज यंगर डेज, तो ट्रेन के ऊपर चढ़कर काफी यंग सब प्रचारक जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वो लोकल ट्रेन और जैसे दूसरी ट्रेन इंटर स्टेट ट्रेन होती है पैरिस के अंदर कैसे प्रचार करते थे, वो लोग ट्रेन पर चढ़ जाते थे किताबें लेकर और जैसे ही ट्रेन चलने लगती थी चलती ट्रेन से कूद जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन वो सब प्रचार करने गए तो इंद्रदन स्वामी कुछ दूरी पर थे और एक यंग लड़की 16-17 साल की फ्रेंच लड़की ट्रेन के ऊपर चढ़ी और उसने एक व्यक्ति को कृष्णा बुक दी। उस व्यक्ति ने वो कृष्णा बुक लेकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और उस कृष्णा बुक को जमीन पर फेंक के उसके ऊपर वो पैर से उसको मारने लगा और उस लड़की को उसने बालों से खींचा और उसे चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। तो इंद्रप्रेम स्वामी कहते हैं कि मुझे पता चला और मैं भागा वहां आया और उस लड़की को उठाया और मंदिर लेकर गया, और मंदिर पहुंच कर पता चला उसका एक माइनर फ्रैक्चर है और उसको थोड़े चोटें लगी हैं, पर वो फिर भी बहुत ज्यादा भगवान की कृपा मान रही थी, उसने ये रिवर्स नहीं लिया इसको। चार दिन में वो ठीक हो गई और फिर से प्रचार में चली गई। वो व्यक्ति जो था वो मैड्रिड जा रहा था ट्रेन से, पेरिस से मैड्रिड, और वो किताब वो अपने साथ ले गया कि घर जाके अपनी वाइफ को दिखाऊंगा कि ये हरे कृष्णा वाले कैसे बेगर्स हैं और ये कैसे भीख मांगते हैं ट्रेन पर, आज मैंने इनका क्या हाल किया। वो किताब कृष्णा बुक वो घर ले गया और वो फटी हुई किताब उसने घर जाकर अपनी वाइफ को दिखाई, और दिखाने के बाद वो वही डाइनिंग टेबल पर भूल कर अपने काम में व्यस्त हो गया। ही वॉज अ वेरी रिच फेलो, वो बैंकर था और बिजी हो गया। और उसके घर की जो आया थी, जो मेड थी, उसने सोचा ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो ये फटी हुई दी है और फिर भी इन्होंने बहुत संभाल के टेबल पर रखी है। उसने उस किताब को लिया, उसको साफ किया, उसको बाइंड किया अच्छे से और उसे उसकी लाइब्रेरी में बुक शेल्फ में रख दिया। कुछ सालों के बाद उस व्यक्ति की जो वाइफ है कार एक्सीडेंट में मर गई, उसका बेटा घर से भाग गया, उसकी वाइफ उसकी बेटी ने एक किसी बहुत ही लोकल किसी बहुत ही घटिया से एक इंसान से शादी कर ली जिसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं था कुछ नहीं, उसने उस व्यक्ति से शादी कर ली और वो भी घर छोड़ गए और वो आदमी बिल्कुल अकेला रह गया। एंड ही वॉज वेरी रिच, फिल्दी रिच। तो उसने एक दिन ऐसे ही उसके मन में आया कि आज बाइबल निकाल के पढ़ता हूँ, तो वो बुक शेल्फ की तरफ गया, उसे बाइबल नहीं मिली गई, कृष्णा बुक तो उसने वापस उठाया, उस बुक को खोला और उस बुक के ऊपर कौन सा प्रसंग आया जहां भगवान कंस को प्रवचन दे रहे हैं, और तब उसने देखा कि कैसे आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कंस था और उसने भी वही आसुरी कार्य किया। उसको रियलाइज हुआ कि ये वही किताब है और 3 दिन तक वो कहीं नहीं गया, काम पर नहीं गया, 3 दिन तक घर पे रुक के उसने वो पुस्तक को पढ़ा, पूरी कृष्णा बुक पढ़ ली, फिर उसको उल्टा किया तो वो फ्रेंच में थी, तो उसने पीछे देखा कि कहां पर ये इसका मंदिर है, तो उसे पता चला ये फ्रांस में पेरिस में टेम्पल है। उसने वहां फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि मैड्रिड में भी एक मंदिर है, तो यू कैन गो टू द मैड्रिड टेम्पल। वो उसी समय मैड्रिड मंदिर पहुंचा, मंदिर दर्शन बंद थे और हाथ जोड़कर भगवान को कहता है प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। तो इतनी देर में दर्शन खुले तो प्रेसिडेंट जो टेंपल के थे उन्होंने देखा ये व्यक्ति कि पागल है, बार बार मुंह में बड़बड़ाता जा रहा है प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, इसने क्या किया यहाँ पर। तो वो रोना लगपड़ा जैसे दर्शन खुले और उसने प्रेसिडेंट को कहा कि मैं कुछ देना चाहता हूं। उसने चेकबुक निकाली, बड़ा सा उस पर सम लिखा और चेक दिया उनको कि मैं ये भगवान से माफी मांगना चाहता हूं। वो चेकबुक उसने चेक दे दिया, फिर प्रेसिडेंट ने उसको बिठाया, जल वगैरह दिया और उसके बाद उसने उसका लेक्चर सुना और वो लिखते हर संडे लेक्चर में आने लग पड़ा। और वो लेक्चर में आते आते एक संडे आया जब आकर कहता है कि मैं फुल टाइम डिवोटी बनना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति वो बैंकर था तो उसे मंदिर का ट्रेजरर बना दिया गया, और जब वो ट्रेजरर बन गया तो कहता है थोड़े दिन सेवा करने के बाद कुछ महीनों के बाद कहता है नहीं मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और वो वही किताब लेकर वैसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे निकल गया। वो सब उसको कहने लगे तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारी एज भी अब यू आर 40+, तो बड़ा हार्ड वर्क है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, लेट द यंगस्टर्स डू इट। कहता है नहीं मुझे यही करना है, यही सेवा करनी है। तो ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए एक दिन पूरे यूरोपियन बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीट हुई इटली में, और वो व्यक्ति इटली पहुंचा और वहां पे क्योंकि उसके मन में था कि उसने वैष्णव अपराध किया है और उसने उसकी क्षमा मांगनी है, उसने उसी लड़की को खोजा और उसके चरणों में गिरकर माफी मांगी। और उस लड़की ने क्योंकि वो वैष्णव थी तो उसने भी उसको उसी समय माफ किया और कहा कि ये तो छोटी मोटी गलतियां हैं जो होती हैं। और आज वो व्यक्ति फुल टाइम डिवोटी है। इंद्रधवन महाराज कह रहे हैं कि ये रियल लाइफ स्टोरी है जो उन्होंने जीबीसी में सबको बताई कि दिस इज समथिंग के प्रभुपाद ने हमारे संसार को कितना छोटा कर दिया और भक्ति को कितना ऊंचा स्थान दिया है। हरे कृष्ण।
तो ये सब हमें समझना चाहिए कि ये प्रभुपाद जी के पुस्तकों में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हैं, कोई साधारण जीव नहीं है ना। तो हम सबको मौका ढूंढना चाहिए, ये सेवा मिल रही है इसको पकड़े, अपना लाभ करें। देखिए ना कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते, कृष्णा तो सुप्रीम कंट्रोलर, यू कैन डू एनीथिंग। हाँ व्यक्ति कैसा घमंडी था, खुद ही बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है। बहुत धन्यवाद। तो पूरे उत्साह से हमें जुड़ना चाहिए और सब व्यक्तिगत डिफरेंसेस भूल कर संकीर्तन, संकीर्तन का अर्थ है कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेट करते हुए इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर हम माध्यम बन रहे हैं किसी जीव को कृष्ण के साथ पहुंचाने के लिए, तो कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे। अगर किसी घर से एक बच्चा खो जाता है तो माता पिता हमेशा चिंता में रहते हैं, और जैसे ही बच्चा वापिस आता है तो वो माता पिता कितने खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति को कुछ भी उपहार देने को तैयार हो जाते हैं जो उस बच्चे को वापस लेके आया। इसी ढंग से अगर हम किसी भी जीव को कृष्ण के प्रति ले आते हैं तो कृष्ण कितने ज्यादा ग्रेटफुल हो जाएंगे। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए और सबका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि आप सब मिलकर संकीर्तन करते रहना। परम विजय दे श्री कृष्ण संकीर्तन, संकीर्तन आंदोलन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गोत्रे वंदे।